हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जैसे ही झलक होटल से बाहर निकली, सामने आदित्य अपनी गाड़ी के साथ खड़ा था। वो कार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हो। उसकी नज़रें सीधे झलक पर टिक गईं, और अगले ही पल दोनों की आँखें एक दूसरे से टकराईं। आदित्य को सामने देखकर झलक ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बिना कुछ कहे सीधी कार की दूसरी तरफ गई और दरवाज़ा खोलकर बड़े ही संयमित अंदाज में उसकी कार में बैठ गई। सीट बेल्ट लगाते हुए उसने एक पल के लिए आदित्य की तरफ देखा और सपाट लहजे में पूछा, कहाँ चलना है? आदित्य ने इंजन स्टार्ट किया और पूरी तरह प्रोफेशनल सीरियस टोन में बोला, मिस मल्होत्रा, जैसा कि मैंने आपको ईमेल पर डिस्कस किया था, हमें आज अपनी टीम से मिलने जाना है। हमें उन्हें आगे की पूरी डिटेल देनी होगी, साथ ही जो भी केमिकल्स, एक्सेसरीज, रॉ मटेरियल और बाकी ज़रूरी आइटम्स चाहिए होंगे, उनकी लिस्ट फाइनल करके तुरंत प्रोवाइड करवाना होगा। हमें हर चीज़ क्लियर चाहिए, किस स्टेज पर काम है, क्या पेंडिंग है और आगे की टाइमलाइन क्या होगी। झलक ने बस हल्के से हूँ कहा और सामने देखने लगी। कुछ ही देर में दोनों एक अनजान शहर से दूर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़ चुके थे, जहाँ उनका नया लैब सेटअप होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ खुराना पिछले 24 घंटे से कमरे से बाहर नहीं निकला था, लेकिन अगले दिन वो पूरी तरह तैयार होकर महंगे सूट में कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर गहरी सख्ती थी। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी दादी ने उसे रोक लिया। हमें नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था, वो लड़की सच में वापस आई थी या फिर कोई नाटक था, लेकिन बेटा, अब तुम्हें कुछ करना होगा। हम इस तरह पीछे नहीं हट सकते, हमें हर हाल में अपने परिवार की इज्जत बचानी है। उन्होंने आगे कहा, अगले कुछ दिनों में यहाँ एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है, एक ऐतिहासिक डायमंड नेकलेस की। अगर वो नेकलेस हमारे परिवार के पास आ जाता है तो हमारी प्रतिष्ठा फिर से चार चांद लग जाएंगे। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। परिवार की इज्जत बचाने का यही एक रास्ता है कि हम फिर से चर्चा का विषय बने, लेकिन इस बार अच्छी वजह से। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, झलक सच में आई थी या वो कोई भ्रम था? उसने गुस्से से दांत भींचे। अगर वो सच में थी तो वो इस तरह क्यों आई और फिर गायब कैसे हो गई? एक ही पल में उसके सारे प्लान तहस नहस हो चुके थे। आकांक्षा से शादी की तैयारी, दोनों परिवारों की मीटिंग, बिजनेस डील, सब बिखर गया था। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि झलक के बारे में पूरी जानकारी निकाली जाए, खासकर वो प्राइवेट जेट कहाँ से आया, वो कहाँ ठहरी हुई थी, किसके साथ थी। सिद्धार्थ ने पहले ही अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया था। शहर के हर होटल, हर रिजॉर्ट, हर एयरपोर्ट पर खबर भिजवाई गई थी कि अगर ऐसी कोई लड़की दिखे तो तुरंत सूचना दी जाए, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा के झोंके की तरह आई और अचानक गायब हो गई। सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, रणविजय भी अपने स्तर पर उसकी तलाश कर रहा था। दोनों अलग अलग तरीकों से झलक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नतीजा शून्य था। रणविजय बौखलाया हुआ था। अगर वो सच में मर चुकी थी तो फिर वापस आने की क्या जरूरत थी? उसने मेरे सारे प्लान बर्बाद कर दिए। हाँ, मेरे दिल में उसके लिए कभी एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने प्लान के आगे किसी भी इमोशन को आने दूं। मैं उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था और कुछ नहीं। गुस्से में उसने टेबल पर रखा ग्लास फेंक दिया। उधर सिद्धार्थ जानता था कि दादी की नज़र में फिलहाल परिवार की इज्जत सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके लिए पहली प्राथमिकता झलक थी। वो सच जानना चाहता था। नीलामी बाद में भी हो सकती थी, लेकिन झलक का सच अभी जानना जरूरी था। फिर भी दादी की बात का मान रखते हुए उसने नीलामी में शामिल होने का फैसला कर लिया। ऑफिस पहुंचते ही उसने तिरछी नजरों से सभी कर्मचारियों को देखा। रोनित सिर झुकाकर उसके सामने खड़ा था। सिद्धार्थ ने सख्त आवाज में कहा, रोनित, तुरंत पता लगाओ वो लड़की हवा के झोंके की तरह आई कैसे और वापस गई कैसे। मुझे हर डिटेल चाहिए, प्राइवेट जेट से लेकर उसकी लोकेशन तक, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। रोनित ने घबराकर यस सर कहा। सिद्धार्थ की आंखों में इस वक्त सिर्फ एक ही जिद थी, झलक को ढूंढना किसी भी कीमत पर। आखिरकार क्या चल रहा था उसके दिमाग में? अगर वो जिंदा थी तो पहले सामने क्यों नहीं आई? ये कहते हुए सिद्धार्थ की आंखें सच में अंगारे बरसा रही थीं। उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सामने खड़ा रोनित बुरी तरह घबराया हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ की आंखों में देख भी सके। सिद्धार्थ लगातार एक ही बात दोहराए जा रहा था, अगर वो जिंदा थी तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? कहाँ थी वो इतने महीने? और आज इस तरह अचानक उसका आकर सबके सामने खड़े होने का क्या मतलब था? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? और फिर अचानक वो कहाँ गायब हो गई? उसका कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? कमरे का माहौल इतना भारी हो चुका था कि वहां मौजूद हर शख्स की हालत खराब थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। आखिरकार रोनित ने हिम्मत जुटाई। उसने सिर झुकाकर कहा, सर, बस आप मुझे कुछ घंटों का वक्त दीजिए, मैं अभी झलक मैडम के बारे में सब कुछ पता लगा लूंगा। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा हो चुका था कि वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इधर सिद्धार्थ लगातार अपने सिर पर हाथ मारते हुए सोच रहा था। वो वापस आई, लेकिन कहाँ चली गई? आखिर चाहती क्या है वो? क्या सोच रही है? उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे थे। दूसरी तरफ आकांक्षा को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने खुद को अपने ही घर के कमरे में पाया। वो घबराकर उठकर बैठ गई। सबसे पहले उसने अपने हाथों को देखा, फिर अपनी मांग और गले को छूकर चेक करने लगी। उसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ एक बुरा सपना था। उसे तो याद था कि उसकी शादी सिद्धार्थ के साथ हो रही थी। वो हड़बड़ाकर बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो सिद्धार्थ खुराना के साथ होना चाहिए था, उसकी बीवी बनकर उसके साथ। मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे यहाँ क्यों लाए हो आप लोग? मुझे जाने दो, मुझे उसके पास जाना है। आज मेरी शादी है, वो मेरी जिंदगी में आने वाला है, मैं उसकी दुल्हन बनने वाली हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये कहते कहते आकांक्षा बेकाबू होकर रोने लगी। वो लगभग पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसकी माँ नैना और पिता ईशान उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आकांक्षा किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अपनी बेटी की ये हालत देखकर उनका दिल टूट रहा था। ईशान भी अंदर से बिखर चुके थे। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को बहुत चाहा था। उसकी ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। नैना ने आकांक्षा की कंधे पकड़ लिए और थोड़ा सख्त आवाज में बोली, शांत हो जाओ, इस वक्त रोने या पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। हमें दिमाग से काम लेना होगा, होशियारी से सोचना होगा। उसकी आवाज में एक माँ की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक नेता जैसी सोच भी साफ छलक रही थी। वो आगे बोली, एक ही पल में वो लड़की वापस आकर हमसे सब कुछ छीन नहीं सकती। जरूर कोई हमारे ही लोगों में से उससे मिला हुआ है, या फिर हो सकता है कि हमारी अपोजिशन पार्टी ने हमें नीचा दिखाने के किसी ने ये सब प्लान किया हो। शादी वाले दिन ये सब होना कोई इत्तेफाक नहीं है। नैना का दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन आकांक्षा रोते हुए फिर बोली, वो वापस नहीं आ सकती, मेरी खुशियां नहीं छीन सकती, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। कहीं ना कहीं उसे खुद पर भी अफसोस हो रहा था। उसने कभी गुस्से में कहा था कि काश छलक वापस आ जाए और देखे कि उसका परिवार कितना खुश है और वो सिद्धार्थ के साथ कितनी खुश है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि झलक की वापसी एक तूफान बनकर आएगी।
झलक आई, सबके सामने खड़ी हुई, अपनी ताकत, अपने स्टेटस, अपने पावरफुल अंदाज और प्राइवेट जेट के साथ, और फिर एक पल में गायब भी हो गई। ये बात आकांक्षा को अंदर से जला रही थी। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उस लड़की का इलाज मैं जरूर करूंगी, बहुत जल्द उसे तुम्हारे सामने घुटनों पर लाऊंगी। उसने जो पावर और पोजीशन दिखाई है वो सिर्फ हमारे सामने ड्रामा था, किसी ने उसे ये सब करवाया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस वक्त नैना सच में एक चतुर और चालाक औरत लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग पूरी तरह ठंडा और सक्रिय था। ईशान अब भी खामोश बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो करें तो करें क्या। शब्द उनकी जुबान तक आकर रुक जा रहे थे, लेकिन आकांक्षा के दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। झलक का आत्मविश्वास से भरा चेहरा, उसका पावरफुल अंदाज और फिर उसका प्राइवेट जेट में बैठकर चले जाना, वो तस्वीरें उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थीं, और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी और जला भी रही थी।